नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश के विभिन्न भागों में आज मनाए जा रहे हैं पारंपरिक फसल उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट बिल्टकॉन 2025 का किया उद्घाटन। मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता 2024-25 की इंडियन सुपर लीग कप। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज एक के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वन्नाम की जोड़ी ने हासिल किया स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न भागों में आज से पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं। पंजाब में लोग बैसाखी मना रहे हैं, जबकि केरलवासी इसे विशु कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बोईशाख और असम में इसे बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में लोग इस त्यौहार को पुतुंडू के रूप में मनाते हैं। देश के उत्तरी भाग में लोग आज पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ वसंत ऋतु की फसल का त्यौहार बैसाखी मना रहे हैं। किसान खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में अच्छी फसल का उत्सव मना रहे हैं और आने वाले साल में समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तमिलनाडु में लोग कल पंथुथु मनाएंगे। यह दिन तमिल महीने चतरई के पहले दिन बड़े उत्साह के साथ तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये जीवन त्यौहार लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के विभिन्न हिस्सों में फसल कटाई के मौसम के दौरान मनाए जाने वाले ये त्यौहार देश की समृद्ध सामाजिक परंपरा और विविधता में एकता के प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन त्योहारों के माध्यम से राष्ट्र किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करता है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जीवंत फसल उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कृषि भावनाओं को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्यौहार सभी के जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लेकर आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये त्यौहार एकजुटता, कृतज्ञता और नएपन के प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में नई उम्मीदें, खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। श्री मोदी ने कहा कि यह त्यौहार एकजुटता, कृतज्ञता और नईपन की भावना पैदा करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 1919 में इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनके बलिदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन अमीर शहीदों से प्रेरित होकर सभी देशवासी तन, मन और धन से भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अत्याचार के सामने वीरों का बेजोड़ बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। उन्होंने कहा कि भारत उनके साहस का हमेशा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने इस घटना को हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। श्री मोदी ने कहा कि उनके बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उद्योग के हितधारकों से स्थिरता को अपनाने और वैश्विक मानक स्थापित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में वाइब्रेंट बिल्टकॉन 2025 के उद्घाटन के अवसर पर श्री गोयल ने हितधारकों से आयात निर्भरता कम करने, स्वच्छ और हरित निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और भूकंपरोधी और मॉड्यूलर बुनियादी ढांचे की दिशा में काम करने को कहा। श्री गोयल ने निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती ताकत, वैश्विक क्षमता केंद्रों से लेकर मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आवास, बुनियादी ढांचे, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, रेलवे, हवाई अड्डों, राजमार्गों और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित किया। श्री गोयल ने भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्रों की अवधारणा सहित तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन, भारत टेक्स, भारत मोबिलिटी और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। वाइब्रेंट बिल्ट कॉन 2025 नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर भारत में सबसे बड़ा भवन निर्माण सामग्री और निर्माण एक्सपो है, जिसमें 250 से अधिक प्रदर्शक, 50,000 से अधिक घरेलू आगंतुक और लगभग 700 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। सरकार पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अगले 2 वर्षों में देश भर में राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने की दिशा में कार्यरत है, ताकि यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए परियोजनाएं ला रही है, जिससे वहां की सड़कें अमेरिका की सड़कों की बराबरी कर पाएंगे। श्री गडकरी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र और कई देशों के साथ सीमा होने के कारण पूर्वोत्तर में सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूर्वी राज्य में 784 राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएगी। इसके तहत 21,300 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की परियोजनाएं शामिल है। श्री गडकरी ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नागपुर में 170 करोड़ रुपए की लागत से मास रैपिड परिवहन प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस परियोजना में 135 सीटों वाली बस शामिल है, जिसे गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से चलाया जाएगा और ये बहुत किफायती भी होगी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार की जाएगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने युवाओं से अपील की है कि वे विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर की समानता, न्याय और भाईचारा के सिद्धांतों से प्रेरणा ले। डॉक्टर मांडविया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मेरा भारत से संबंधित युवाओं और स्वयंसेविकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित जय भीम यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को भारतीय संविधान की भावना का सम्मान और अनुपालन करना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर मांडविया ने गांधी मैदान से पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी पटना के विभिन्न भागों से गुजरते हुए पदयात्रा पटना उच्च न्यायालय के निकट डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर संपन्न होगी। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान युवा स्वयंसेवियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। कार्यक्रम में मेरा भारत यंग अचीवर्स के स्वयंसेवियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। यह भीम पदयात्रा का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया है। यह कार्यक्रम आज देशभर में 5,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। आज दुनिया भर में पाम संडे मनाया जा रहा है। यह दिवस ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर नागालैंड के गिरजाघर विशेष सेवाएं दे रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है और समाज में शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पाम संडे पर लोगों को बधाई दी है। मिजोरम में पाम संडे, जिसे मिजो में टुमकाउनी के नाम से जाना जाता है, राज्य के सभी हिस्सों में परम्परागत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष चर्च सेवाएं आयोजित की गई और पाम संडे जुलूस निकाले गए। ईसाई धर्म के अनुयायियों ने ईसा मसीह के इसराइल के राजा के रूप में यरूशलेम में विजय प्रवेश की याद में पाम संडे मनाया। पवित्र सप्ताह पाम संडे से शुरू होता है और ईस्टर संडे के साथ समाप्त होता है। मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 की इंडियन सुपर लीग कप जीत ली है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती किरारगन में खेले गए फाइनल मुकाबले में उसने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया। यह मोहन बगान सुपर जायंट का दूसरा ISL खिताब है। इससे पहले उसने 2022-23 में ATK मोहन बगान के नाम से खिताब जीता था। मोहन बगान सुपर जायंट मुंबई सिटी FC के बाद दूसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने एक ही सीजन में ISL लीग शील्ड और कप दोनों जीते हैं, जिसे डोमेस्टिक डबल कहा जाता है। घरेलू मैदान पर खेलते हुए मोहन बगान दूसरी हाफ के शुरुआत में अल्बर्टो के सर्व गोल की वजह से पिछड़ना पड़ा। हालांकि दूसरी हाफ में जेसन की पेनल्टी और अतिरिक्त समय में 6वें मिनट पर जेमी मैक्रालेन के गोल की मदद से उसने मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।